नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को एक दिवसीय दौरे पर राजगीर आ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश में मॉनसून के 20 जून तक पहुंचने के आसार। 19 जून की शाम प्रदेश में उत्तर पूर्व से मॉनसून करेगा प्रवेश। और आज गंगा दशहरा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना, सिमरिया धाम, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को एक दिवसीय दौरे पर राजगीर आ रहे हैं। श्री मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित भी करेंगे। नालंदा के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये राशि 9,03,00,000 किसानों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3,00,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।
प्रधानमंत्री जी के काशी के कार्यक्रम के साथ देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में, हर गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि विभाग की पंचवर्षीय योजना में दवा सुरक्षा बढ़ाने, चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, जन औषधि योजना के विस्तार पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण संयंत्रों को विश्व स्तरीय मानकों पर उन्नत करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई सड़कें और पुल निर्माण की योजना बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि यातायात को सुलभ और सुगम बनाने के लिए नई बाईपास सड़कों का चयन किया जाना चाहिए। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि माले की जीत हिंदी पट्टी में वामपंथ के उभार का वाहक बनेगी। उन्होंने पार्टी के 2 दिवसीय केंद्रीय कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में लोकतंत्र के पक्ष में हवा चल रही है और इसमें नई राजनीतिक ताकतों को उभरने का मौका मिल रहा है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने कहा है कि युवाओं में उन्नत कौशल के विकास से जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आ रहा है। उन्होंने पटना में कौशल विकास पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब तेजी से बदल रहा है और यहां के युवाओं को भी रोजगार और सम्मान चाहिए। श्री राजेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने इस दिशा में कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्तरों पर कोशिश की जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, शेखपुरा, जमुई, सारण और नवादा के कुछ स्थानों पर आज भी लू और हीट वेव का प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति प्रदेश के कई इलाकों में कल भी बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक ने बताया कि अगले 2 दिनों तक राज्य के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग एवं दक्षिण मध्य के कुछ भाग में भीषण उष्ण लहर, जबकि उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के एक या दो जिलों में उष्ण लहर एवं उत्तर पूर्व के जिलों को छोड़कर बाकी भागों में उष्ण एवं आर्द्र दिवस का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में लू से 13 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद में 5, सारण और गया में 3-3 तथा रोहतास और भोजपुर में 1-1 व्यक्ति की लू से मौत हुई है। राज्य में अब मॉनसून के पहुंचने में और 4 दिन की देरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले प्रदेश में 17 या 18 जून को मॉनसून के पहुंचने की संभावना जताई थी। नए अनुमान के मुताबिक अब मॉनसून 20 जून को पहुंचेगा। मॉनसून उत्तर पूर्व भाग से पूर्णिया या किशनगंज के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से 19 जून की शाम से बादल छाने लगेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने भीषण गर्मी और लू से बचने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। यदि निकलना आवश्यक हो तो छाते का इस्तेमाल करने को कहा गया है। साथ ही लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी गई है। एम्स नई दिल्ली के चिकित्सक डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि गर्मी के मौसम में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
आजकल टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप अम्ब्रेला यूज करें, अपनी स्किन को कवर करके रखें, हाइड्रेट करके अपने को रखें, नमक के पानी को भी ले सकते हैं और साथ में प्रिकॉशन रखें कि जो स्पेशली एल्डरली पर्सन है और जो बच्चे लोग हैं उनको ज्यादा ख्याल रखना है, उनको हीट एक्सपोजर से हमें बचाकर रखना है। तो प्रिकॉशन सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि हम डिफरेंट है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लगभग 20,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं, जिनमें लगभग 4 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि वंदे भारत की स्लीपर श्रेणी का ट्रायल अगले 2 महीनों में शुरू हो जाएगा। फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल कुर्सी की सुविधा है। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जा रही थी। ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 35,000 किलोमीटर रेल ट्रैक बनाए गए हैं। रेलवे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। रेलवे को यह सम्मान कई स्थानों पर सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर मिला है। इस वर्ष 26 फरवरी को रेल मंत्रालय के एक कार्यक्रम में 2,000 से अधिक स्थानों पर 40,19,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेलवे पुलों पर सड़क के उद्घाटन और रेल स्टेशनों की आधारशिला रखने के लिए किया गया था। आज गंगा दशहरा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस अवसर पर पटना, सिमरिया धाम, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया के विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। राजधानी पटना में पुलिस से गश्ती को सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। पटना के प्रभारी एसएसपी रोशन कुमार ने बताया कि हर दिन जिले में तैनात एक आईपीएस अधिकारी गश्ती दल की निगरानी करेंगे और उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि जीपीएस के माध्यम से गश्ती वाहनों के लोकेशन पर भी नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार ने कथित तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी एक फर्जी वेबसाइट की पहचान की है। ये वेबसाइट सरकारी नौकरी देने का दावा करती है और पंजीकरण शुल्क के रूप में 435 रूपये की मांग करती है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि वेबसाइट का सरकार से कोई संबंध नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.gov.in है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा कर दी है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए 30 लेखकों का चयन किया गया है। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जाने माने लेखक नारायण जी को उनके कहानी संग्रह अनार के लिए दिया जाएगा। वे मधुबनी जिले के घोघर डीहा के रहने वाले हैं। वहीं मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए मधुबनी जिले की ननौर गांव निवासी रिंकी झा रिश्का का चयन किया गया है। उन्हें उनकी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। T20 विश्व कप क्रिकेट में कल भारत और कनाडा के बीच मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। मैच में एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी और दोनों टीमों को एक एक अंक मिले। प्रतियोगिता में भारत 7 अंकों के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा जबकि कनाडा की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पटना जिले में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता के लिए 27 जून से 31 जुलाई तक जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। सहरसा में श्रम संसाधन विभाग की धावा टीम ने होटल में काम करने वाले 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। दोनों बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया है और होटल मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पश्चिम चंपारण के मटियारी थाना क्षेत्र के हौदा डुमरा गांव में असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज में एक एम्बुलेंस से पुलिस ने 858 लीटर शराब जब्त की है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने प्रदेश में रोजगार के बढ़ रहे अवसरों से जुड़ी खबर पर लिखा है 916 करोड़ के निवेश पर मुहर, 6000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दैनिक जागरण ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में हो रही कार्रवाई का शीर्षक लगाया है। पटना और गोधरा की घटनाओं से एनटीए पर सवाल। दैनिक भास्कर ने अग्निवीर की सेवा शर्तों में बदलाव की संभावना पर लिखा है 50% परमानेंट हो सकते हैं सेवा काल बढ़ने की उम्मीद। प्रभात खबर ने सरकारी स्कूलों की जांच के संबंध में शिक्षा विभाग के निर्देश का शीर्षक बनाया है। अब डीएम की निगरानी में ही की जाएगी स्कूलों की जांच। आज अखबार लिखता है 1 जुलाई से बदल जाएंगे देश के कई कानून। राष्ट्रीय सहारा ने G7 के शिखर सम्मेलन का शीर्षक लगाया है वैश्विक स्तर पर भारत एक उभरती महाशक्ति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को एक दिवसीय दौरे पर राजगीर आ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश में मॉनसून के 20 जून तक पहुंचने के आसार। 19 जून की शाम प्रदेश में उत्तर पूर्व से मॉनसून करेगा प्रवेश। और आज गंगा दशहरा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना सिमरिया धाम बक्सर भागलपुर मुंगेर और खगड़िया के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।